आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले एनसीसी युवाओं तथा अन्य अतिथियों से मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर, विभिन्न राजनीतिक दलों की वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का अपने घरों से मतदान की सुविधा शुरू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए उसकी सार्थकता पर भरोसा व्यक्त किया। और आज पूरे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले एनसीसी और युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के कैडेट्स, स्वयंसेवियों, कलाकार तथा जनजातीय समुदाय के अतिथियों से आज मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मोदी उन कलाकारों से मुलाकात की जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। समारोह में संविधान की 75वीं वर्षगांठ और जन भागीदारी की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। इस वर्ष विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार की 31 झांकियों का मुख्य विषय होगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौसम विभाग पर आधारित झांकियां भी शामिल होंगी। परेड में 300 कलाकार देश के विभिन्न हिस्सों के वाद्य यंत्रों के साथ सारे जहां से अच्छा की प्रस्तुति देंगे। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार का राष्ट्रीय आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने का एक विशेष प्रयास है।
आमंत्रित अतिथियों में दुर्घटना निवारण और आपदा सहायता, आपदा मित्र स्वयंसेवक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर, किसान उत्पादक संगठन FPO, PM किसान सम्मान निधि लाभार्थी, माई भारत स्वयंसेवक और अन्य शामिल है। दिल्ली के पांडव नगर के आपदा मित्र स्वयंसेवक पंकज दास ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना उनके लिए सपने के सच होने जैसा क्षण है।
मैं खुद वीडियो बनाता और वीडियो बना बना के ग्रुप में डालता हूँ ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ। अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता तो आपदा मित्र आपकी मदद के लिए है। इस तरह की एक्टिविटी अगर दूसरे आपदा मित्र भी करे तो वो उनसे हर कोई टाई अप में रह सकता है, चाहे वो RWS हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, कोई भी।
इस बीच उत्तरी जिले की आशा वर्कर नीलम ने महिला स्वास्थ्य और समाज में उनके योगदान की सराहना करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। यह कार्यकर्ता और स्वयंसेवक समाज की आपदा प्रतिक्रिया से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में जम्मू क्षेत्र के 20 विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। इनमें पैरालंपिक पदक और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी तथा राकेश कुमार शामिल हैं। अन्य अतिथियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सड़क निर्माण श्रेणी और जल योद्धा श्रेणी से भी विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC 26 जनवरी को सभी लाइनों पर सवेरे 3 बजे से अपनी मेट्रो सेवा शुरू करेगा। DMRC ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यात्रियों को कर्तव्य पथ पर पहुंचने में सहायता करने के लिए निर्णय लिया गया है। DMRC के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवा सवेरे 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। इसके बाद नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म विज पर भी किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज लाइव कवरेज के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। श्री जाजू ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए सभी काम कर रहे हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार हाई क्वालिटी पिक्चर रिजोल्यूशन सुनिश्चित करने के लिए 4K कैमरे लगाए गए हैं, जो पहले से 8 गुना बेहतर हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों की कोशिश तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेता रैलियां और घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने आज अपने घरों से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस पहल के अंतर्गत तिलक नगर, नांगलोई जाट और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आज नागरिकों ने अपना वोट डाला। निर्वाचन आयोग के अनुसार दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति सक्रिय रूप से इस सुविधा का उपयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र पर रिपोर्ट सुन रहे हैं।
गांधीनगर विधानसभा सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2020 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को जिन 8 सीटों पर हार मिली थी उसमें एक सीट यह भी है। पिछले चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अनिल कुमार वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को करीब 6,000 वोटों के अंतर से मात दी थी। ऐसे में इस बार इस सीट पर कांटेदार मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में स्थित यह सीट गांधीनगर कपड़ा मार्केट के लिए बेहद प्रसिद्ध है और इसे एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट और कपड़ा बाजारों में से एक माना जाता है। गीता कॉलोनी, सीलमपुर और कृष्णनगर जैसी कॉलोनियों से घिरी हुई इस सीट पर 1,71,000 से अधिक मतदाता है। इस बार विधानसभा चुनाव में गांधीनगर सीट पर जाम, जर्जर सड़कें, पार्किंग की समस्या, नालियों की खराब स्थिति और नगर निकाय से संबंधित समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए कहा इससे फर्जी मतदान और एक से अधिक बार मतदान करने की घटनाओं में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रणाली सुनिश्चित करती है कि केवल सही मतदाता ही मतदान कर रहा है। नई दिल्ली में आज निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन निर्वाचन प्रबंधन निकायों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि सुदूर मतदान एक क्रांतिकारी कदम है जिससे नागरिक देश के किसी भी हिस्से में रहकर मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था दिव्यांगों, बुजुर्गों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को मतदान की सुविधा देती है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत में पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। एक रिपोर्ट।
भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बाल विवाह, भ्रूण हत्या और लैंगिक असमानता जैसे गंभीर मुद्दों को समाप्त करने की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से भारत में पहली बार 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने बालिकाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, नंदा देवी कन्या योजना, CBSE उड़ान योजना आदि शामिल हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण। समाचार कक्ष से जया भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बालिकाओं को सशक्त बनाने में योगदान देने वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कौशल, स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने श्री केजरीवाल की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। सुश्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर इस मामले में कोई जांच नहीं करने का आरोप लगाया।
दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोरोना महामारी के दौरान उनकी आय बढ़ने को लेकर सवाल किए हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सचदेवा ने कहा कि श्री केजरीवाल के लिए कोविड 19 महामारी का दौर अवसरों का दौर था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने आबकारी नीति बनाई और अपनी आय 40% बढ़ा ली।
ये काल जो है कोविड का काल, अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे लगता है ये अवसर का काल था। लोगों को मरने के लिए छोड़ा, अपनी कमाई 40 गुना दिखाई, शराब की नीति बनाई, शीश महल बनाया, लेकिन सच अभी और भी है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय की शुरुआत की है। ये निगरानी प्रणाली युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता में वृद्धि करेगी और इसके अत्याधुनिक सेंसर भविष्य के युद्धों की बेहतर तस्वीर देने में सक्षम होंगे। एक रिपोर्ट।
ये प्रणाली इस वर्ष मार्च से भारतीय सेना में 3 चरणों में शामिल की जाएगी। इस प्रणाली की मदद से विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करने, आक्रमणों को रोकने और युद्ध की स्थिति का सटीक विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये प्रणाली खुफिया तंत्र और निगरानी को कई गुना बढ़ा देगी। इसके शामिल होने से भारतीय सेना में डेटा और नेटवर्क संचालन की दिशा में नई शुरुआत होगी। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में संजय प्रणाली मुख्य आकर्षण रहेगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अब तक 577 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 284 गैर लाइसेंसी हथियार और 394 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 46,000 से अधिक लीटर शराब, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की 119 किलोग्राम मादक पदार्थ और 5,29,00,000 से अधिक की नकदी जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि 7 जनवरी से अब तक 19,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर तथा आबकारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी में रह रहे प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ उत्तर प्रदेश विरासत और राष्ट्र की प्रगति का प्रतिबिंब रहा है। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने 318 ग्राम अवैध सोना बरामद किया। इस सोने की अनुमानित कीमत 23,76,000 रुपए से अधिक है। दिल्ली कस्टम विभाग ने बताया कि सोने की तस्करी के इस मामले में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया गया जो रियाद से सोना लेकर दिल्ली पहुंचा था। विभाग के अनुसार यात्री के खिलाफ कस्टम एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया और इस तस्करी के पीछे के नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप में ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीम को बधाई दी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्रीमती खड़से ने पुरुष और महिला टीम को बधाई देते हुए कहा कि देश के पारंपरिक खेल की जीत है।
हमारे कंट्री का भी अगर ये खो खो पारंपरिक हमारा गेम है, आज ओलंपिक में जाता है तो हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। हमारे पूरी दुनिया इस खेल को समझेगी, इस खेल को देखेगी।
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष और बादली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने आज स्वरूप नगर एक्सटेंशन और के ब्लॉक जहांगीरपुरी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने जनता से 5 फरवरी के दिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान की अपील की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले एनसीसी युवाओं तथा अन्य अतिथियों से मुलाकात की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का अपने घरों से मताधिकार की सुविधा शुरू। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज बायोमेट्रिक मतदान प्रणाली को अनूठा बताते हुए उसकी सार्थकता पर भरोसा व्यक्त किया। और पूरे देश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।